नमस्ते। योग समन्वय भाग दो, 11वां चैप्टर, द मास्टर ऑफ द वर्क, कर्म के अधीश्वर। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कई मामलों में बहुत प्रैक्टिकल भी है, कई चीजें जो स्मरण रखने योग्य हैं। लेकिन पहले ये बात उठती कि कर्म के अधीश्वर, ईश्वर तो एक ही है, तो कर्म के अधीश्वर विशेष रूप से मास्टर ऑफ वर्क, ये एक्सप्रेशन क्यों है। थोड़ा सा बैकग्राउंड है इसका कि अगर हम सांख्य में देखें तो वहाँ दो पुरुष की बात, एक पुरुष की बात हुई, देयर इज ओनली वन पुरुष, और प्रकृति के अंदर वो झिलमिल झिलमिल वो अनेकों का आभास होता है, क्योंकि वो प्रकृति के ही अंदर एक अहंकार का एक प्रिंसिपल है, जिसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कि कई हैं, अलग अलग हैं, लेकिन पुरुष एक है। पुरुष ईश्वर कह लें या जो भी कह लें, किंतु स्ट्रिक्टली जो सांख्य को मानते हैं वो अनिश्वरवादी स्वयं को मानते हैं, अनिश्वरवादी इस सेंस में कि एक पुरुष है लेकिन उसका प्रकृति से कोई लेन देन नहीं है, केवल उसकी जब प्रकाश उतरता है प्रकृति के अंदर तो प्रकृति सचेतन होती है और अहंकार को अप्लाई करके मल्टीपल सेंटर्स जहाँ ये लगता है कि हम अलग हैं वो अलग है, इंडिविजुअल सोल्स इत्यादि। फिर यदि हम उपनिषदों में जाएं तो उपनिषदों में दो पुरुषों की बात हुई है, तो एक पुरुष वो है, अगेन पुरुष एक है पर उसकी दो अवस्थाएं हैं, एक वह जो ठीक सांख्य के पुरुषों की तरह विद्यमान है, ऊपर इनएक्टिव है, वो केवल निर्लिप्त भाव से है और एन्जॉय कर रहा है, अपने ही आप में आत्मरति है, किंतु वह जब प्रकृति के अंदर देखता है तो वहाँ पे वो प्रकृति में अपने आप को लीन कर देता है, जब वो लीन कर देता है प्रकृति में तो वो अनीश हो जाता है, वो उसमें पूरी तरह रम जाता है, तो उसके अनुसार वो स्वीट बिटर फ्रूट लेता है। तो ये एक प्रकार से एक स्टेप आगे है, यानी सांख्य में तो पुरुष है और प्रकृति है, और उपनिषद एक कदम आगे ले जाती है कि एक ही पुरुष की दो अवस्थाएं हैं। और श्रीमद् भगवद गीता, जिसका जो कर्मयोग और ये ट्रिपल पाथ है जो हम सिंथेसिस ऑफ योग में देखते हैं, उसमें तीन पुरुषों की बात की गई है। तो ये दोनों तो पुरुष हैं, एक है क्षर भाव, क्षर भाव गीता जैसे बताती है जो इस म्यूटेबल चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर, और दूसरा इम्यूटेबल अक्षर ब्रह्म। तो अब ये तो लगता है एक ही जैसी चीज़ है, फिर इसमें नई बात क्या है, इंडिविजुअल सोल्स कहाँ से आई। तो श्रीमद् भगवद गीता इसका समस्या का हल करती है बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से, क्योंकि वो भी कहती है कि एक अक्षर है और ये बाकी सब शरोभाव में उसका रिफ्लेक्शन है। तो वो जो थर्ड स्टेटस है पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष, अब उत्तम पुरुष की जो परा प्रकृति, यानी सांख्य में केवल एक निम्न प्रकृति है, और निम्न प्रकृति है उस सांख्य निम्न नहीं कहती है, त्रिगुणात्मक प्रकृति है, उसके परे पुरुष है, और उपनिषद भी त्रिगुणात्मक प्रकृति है, उसके परे पुरुष है। अब श्रीमद् भगवद गीता पहली बार ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करती है, या अनुभव के आधार पर है कि एक उत्तम पुरुष है, उसकी परा प्रकृति है, और परा प्रकृति ने ही जीव की रचना की है। तो ये एक बड़ा ही एक नया, यानी हम सब के अंदर जो इंडिविजुअल सोल है वो डिवाइन मदर को बिलोंग करती है, अगर हम श्री अरविंद की टर्मिनोलॉजी में, तो वो जो एक गुत्थी है कि एक सोल है कि मल्टीपल सोल्स हैं, या सोल है ही नहीं, एक एक्सट्रीम वेदांत में ये भी है कि देर इज नो इंडिविजुअल सोल, इसको गीता इस तरह से सुलझाती है, उत्तम पुरुष जिसके हम सब अंश हैं, ममैव अंश, और उन अंशों को जीव के अंदर उसको रूप देती हैं, परा प्रकृति हैं, फिर वहां से वो लोअर नेचर में उतरता है। तो इसकी बेयरिंग है योग से, और इसके मैं डिटेल फिलोसफिकल एस्पेक्ट में नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो इस चैप्टर का ध्येय नहीं है, किंतु मुख्य चीज ये है कि जो इंडिविजुअल सोल है वो ढूंढ रही है अपने ही परमात्मा को जहाँ से वो निकली है, लेकिन वो कैसे ढूंढे, क्या रूप है उनका। आप कल्पना कीजिए कि एक बूंद को आप किसी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से, समुद्र क्या है या जल तत्व क्या है ये उसमें विलीन हो सकती है, पर कैसे जानेगी वो, अगर जानना चाहे तो कैसे जानेगी कि समुद्र क्या है। तब प्रैक्टिकली इट सीम्स इम्पॉसिबल, केवल एक बूंद क्या, एक लहर के लिए भी यह जानना असंभव लगता है। तो अब ये द मास्टर ऑफ वर्क से एक दूसरी चीज़ जो ये निकलती है कि लेकिन चूंकि जो कुछ भी प्रकृति के अंदर हो रहा है, ये भी एक अद्भुत बात है, क्योंकि सांख्य में अल्टीमेटली जो प्रकृति है वो अपना काम कर रही है त्रिगुणात्मक तरीके से, मैकेनिकल है, और लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, इस प्रकृति के अंदर भी इम्पल्शन भी जो है वो डिवाइन डाल रहे हैं, वो परा प्रकृति का ही इम्पल्शन है, लेकिन वो निम्न प्रकृति में त्रिगुणात्मक बन गया है। तो कहने का अर्थ ये कि मास्टर ऑफ वर्क, यानी ये जो सारा कार्य संसार में हो रहा है कर्म, ये भी ओरिजिनली इसकी जिम्मेदारी भगवान की है। अदरवाइज अगर आप शुद्ध उपनिषद को एक तरह से इंटरप्रेट करो तो ये आता है कि ये चीजें मैकेनिकली अनफोल्ड हो रही हैं और आपको इससे केवल बाहर निकलना है, इसलिए व्यक्तिगत मुक्ति की बात की गई है। लेकिन जिस दिन हम ये जान जाते हैं कि नहीं, इसके इसकी भी जिम्मेदारी भगवान की है, मैं एक मानवीय भाषा में बोल रहा हूँ, तो फिर उन्होंने ये सारा जो बनाया है तो इसके द्वारा भी, इसके थ्रू भी वो स्वयं को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं की रचना है, किसी और की रचना नहीं है। तो कर्म के माध्यम से हम जब भगवान को मिलते हैं, क्योंकि अलग अलग पथ हैं और जैसा पथ होता है उसके अनुसार भगवान से हमारी भेंट होती है। अब शुद्ध ज्ञान योग में जाएंगे तो अक्षर ब्रह्म के रूप में आपके सामने प्रकट होंगे, निर्गुण ब्रह्म, और कर्मियों के माध्यम से जाएंगे तो वो त्रिगुणातीत भी हैं, पुरुषोत्तम भी हैं, और इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं जिसमें हम धीरे धीरे आएंगे। तो मास्टर ऑफ वर्क वो हम कर्म के मार्ग से जब हम भगवान से मिलते हैं और भगवान से साक्षात्कार होता है तो वो क्या होता है। पर पहली चीज़ इसमें ये चीज़ श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि ये पथ बड़ा लंबा है, और ये लंबा इसलिए है कि हम लोग तो उग्र भाव से जल्दबाजी में जल्दी से मिल जाए भगवान, तो ये जो एक एवरेज व्यक्ति का एटीट्यूड होता है वो उचित नहीं है। भगवान कब मिलेंगे ये आप फिक्स नहीं कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ये भगवान फिक्स करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हम कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए तो उनसे मिलन संभव होता है और वो सहज होता जाता है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, हम लोगों के अंदर एक भाव होता है कि भगवान मिलेंगे मतलब एक उनका दर्शन होगा, एक फॉर्म आएगा इस प्रकार का, वो अपनी जगह सही है, लेकिन वास्तव में भगवान हमारी चेतना की अवस्थाओं में प्रकट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत रेस्टलेस है कोई व्यक्ति, अचानक उसको एक दिव्य शांति या एक असीमित शांति का आभास होता है, तो क्या वो भगवान नहीं है? वो भगवान ही है, भगवान का ही स्पर्श है, और वो ज़्यादा सही है क्योंकि विजन एक नाम रूप के दायरे में चीज़ें हो सकती हैं कि आपने किसी को देखा, बहुत सारे रूप छल भी होता है इस मार्ग में, बहुत बहुत कुछ, लेकिन शांति का आभास, एक ऐसी शांति जो आपको सुदृढ़ करती है, एक ऐसी शांति जो आपके अंदर आनंद के स्रोत को खोलती है, एक ऐसी शांति जो आपको संबल देती है, वह ज़्यादा आवश्यक है। तो इस प्रकार से भगवान धीरे धीरे करके हमारी चेतना को अधिकृत करते जाते हैं और हम भगवान के नेचर में ग्रो करने लगते हैं। तो भगवान का जो रेवलेशन इसमें, ऐसा नहीं कि वैसा नहीं हो सकता कि आप विजन देखो, सब कुछ संभव है, लेकिन इस प्रकार से ये यात्रा चलती है। और चूंकि ये लंबी यात्रा इसलिए भी है कि आमतौर पर हम प्रकृति को काट कर भगवान दो भागों में बांट देते हैं, ये सांख्य का परिणाम है और उसी की मानस विचारधारा जो वेदांत में भी आया, वेदांतिक योग में नहीं पर वेदांत में एक विचारधारा आ गई फिलॉसफी में कि प्रकृति और पुरुष तत्व अलग है। लेकिन जब हम कहते हैं मास्टर ऑफ वर्क, सब कुछ भगवान का है, तो भगवान हर गति, हर चीज में विद्यमान है और हर चीज के माध्यम से वो हमको रिवील करेंगे और प्रकट करेंगे। तो ये रास्ते को लंबा बना देता है लेकिन ज़्यादा कंप्लीट बनाता है, और इसीलिए इसमें अधीरता के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते, बहुत श्रद्धा के साथ हमको ये मार्ग पे चलना है, क्योंकि हो सकता है कि एक लंबे समय तक हमारी जो धारणाएं हैं कि भगवान ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसे रिवील होने चाहिए, ना हो। हालांकि हर किसी को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि रास्ते में भगवान बीच बीच में आप जाते हैं, मैराथन दौड़ते हैं तो जगह जगह पर लोग खड़े होते हैं, तो आपको कुछ कोई पानी पिला रहा है, कोई चीयर अप कर रहा है, तो भगवान के भी रास्ते में ऐसे चीयर करने के तरीके हैं, बीच में आपको पानी भी मिल रहा है, थोड़ा निलाया जा रहा है, थोड़ा आपका पसीना पोछा जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उस पे चलते चलते एक लंबे रास्ते के बाद भगवान प्रकट होते हैं। तो बहुत श्रद्धा की जरूरत है, क्योंकि उनका जो तरीका है वह नहीं है जो मनुष्य कल्पना करता है। और ये चीज इस चैप्टर में बार बार आती है। हम लोग इसके कुछ पैसेजेस पढ़ेंगे, द मास्टर ऑफ द वर्क, ये पेज 243 पर है। बट द पैसेज इज लॉन्ग एंड द लेबर आर्डवस बिफोर वी कैन लुक ऑन हिम विद द आईज दैट सी ट्रू, एंड स्टिल लॉन्गर एंड मोर आर्डवस मस्ट बी अवर एंडेवर इफ यू वुड रीबिल्ड अवर सेल्स इन हिज ट्रू इमेज। तो दो बातें हैं, एक तो है भगवान से मिलना और सही ढंग से, ट्रू मतलब हर विजन, कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। और इसीलिए विजन और वॉइसिस को बहुत माँ नहीं इंपॉर्टेंस देती हैं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ मिक्स हो सकता है, हमारा माइंड फॉर्म्स गढ़ लेता है। और खासकर क्योंकि हमारे मन के अंदर एक छवि होती है उसको आधार बना करके, और चूंकि हम लोगों को सच्चा अनुभव नहीं होता है एक एवरेज व्यक्ति को, तो वो उसे मिसलीड हो सकता है। लेकिन जो उनके स्पर्श का प्रभाव है वह गलत नहीं होता है। जैसे वो चिर शांति का आभास वो केवल डिवाइन कॉन्शियसनेस दे सकती है, उस असुर रूप धर सकता है, लेकिन वह भगवान के स्पर्श का जो चेंज आता है प्रकृति में वो नहीं ला सकता है। तो इस योग में दो चीजें, एक है भगवान का स्पर्श, उनसे मिलन, दूसरा शेरविंद कहते हैं लेबर इज इवन लॉन्ग, की भगवान के रूप में ढलते जाना, साधर्म गति, उनके जैसे बनते जाना, सादृश्य गति, तो वो एक लंबी प्रोसेस है। द मास्टर ऑफ द वर्क डज नॉट रिवील हिमसेल्फ एट वंस टू द सीकर। तो ये जो लोग, ये वो वाला योग नहीं है कि 14 दिन में हम आपकी कुंडलिनी जागृत कर देंगे, आपको ये विजन हो जाएगा, ये वो वाला योग नहीं। इसमें बहुत धैर्य की जरूरत है और कई स्टेजेस और ग्रेडेशंस में होता है, इसलिए बहुत श्रद्धा और पेशेंस की जरूरत है। अब इसको शेरविंद बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं कि पेशेंस कैसा होना चाहिए। फॉर हिज माइंड जजेज ऑलवेज बाय द अपीयरेंस ऑफ थिंग्स सिंस दैट इज द फर्स्ट इनग्रेन्ड हैबिट ऑफ द इंटेलेक्चुअल रीजन इन विच ही सो इनऑर्डिनेटली ट्रस्ट। अब कैसे जज करता है व्यक्ति, भगवान के ओर हम मुड़ गए, भगवान हमारे साथ हैं, सब बहुत अच्छा है, जब तक, एक उदाहरण में ले रहा हूं जो आजी का कोई ताजा ताजा उदाहरण, कोई व्यक्ति गाड़ी में जा रहा था, कार में, फिर अचानक उसको ऐसा लगा, जब वो कार काफी देर खड़ी रही, वापस कार में बैठा तो उसको लगा शायद कहीं कोई फ्यूल लीकेज तो नहीं है, ऐसी स्मेल सी आई, तो उतर गया और उसने कार वहीं खड़ी रखी। कुछ समय के बाद उसमें एक्चुअली आग लगी हुई थी और पूरी कार स्वाहा हो गई। तो उसके अंदर ये प्रश्न उठा कि क्या भगवान की सुरक्षा मेरे से हटा ली गई है। मैंने कहा ऑन द कॉन्ट्ररी सुरक्षा है, इसलिए तुम्हें यह आभास हुआ और तुम चले गए। अब कोई जरूरी नहीं कि भगवान आपकी प्रॉपर्टी की भी देखभाल करे, हालांकि भगवान वो भी कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि व्यक्ति, कोई घटना होती है, मान लीजिए आपका कोई नुकसान हो गया जीवन में, तो व्यक्ति ये सोचने लगता है अरे कहाँ है भगवान। तो यहाँ श्री अरविंद कह रहे हैं कि ऐसे क्षण आते हैं जब फेथ हमारा, नथिंग इज ईजियर फॉर अस दैन टू एक्यूज गॉड इन अवर हार्ट्स व्हेन वी सफर लॉन्ग और स्टम्बल इन द डार्कनेस और टू एब्ज्योर द आइडियल दैट वी हैव सेट बिफोर अस। कि कहाँ भगवान देखभाल कर रहे हैं, देखो मेरा जीवन कितने कष्ट में है, लेकिन अगर वो ध्यान से देखे तो देखेगा कि इस कष्ट के जीवन में भी एक गाइडिंग हैंड मुझे ले जा रहा है इन सब चीजों के थ्रू। वो हम नहीं देख पाते क्योंकि हमारे डिजायर्ड सेल्फ ने कल्पना की हुई है, लेकिन भगवान को जो प्रोवाइड करना है, जितना करना है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी आप, भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं आपके लिए कोई 10 मंजिला एक मकान और एक एम्पायर खड़ा करके दूंगा। वो अगर जरूरी है आपके भाग्य में, वो है नियति ने, तो ठीक है, लेकिन आपका योग क्षेम देखभाल भगवान बड़े सुंदर ढंग से करते हैं और हम कई बार उसको नहीं देख पाते हैं। हम एक्यूज करने लगते हैं भगवान को बहुत रेडिली। For we say, I have trusted to the highest and I am betrayed into suffering and sin and error. Suffering तक ठीक है, बार बार गिर पड़ते हैं, बार बार भूल करते हैं, बार बार पुरानी प्रवृत्तियां आ जाती हैं, तो व्यक्ति कई बार अपनी फेथ को लूज करने लगता है और वो कंप्लेन करने लगता है कि क्या फायदा हुआ मेरा। तो यहां पर श्री अरविंद हमको सचेत कर रहे हैं, और एल्स आई हैव स्टेक माई होल लाइफ ऑन एन आइडिया विच द स्टर्न फैक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस कॉन्ट्राडिक्ट एंड डिस्करेज। इट वुड हैव बीन बेटर टू बी एज अदर मैन आर, वो एक्सेप्ट देयर लिमिटेशंस एंड वॉक ऑन द फर्म ग्राउंड ऑफ नॉर्मल एक्सपीरियंस। कि भाई हमने माया छोड़ दी, मायापति मिले नहीं लेकिन दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। आप राम को पकड़ लीजिए, माया अपने आप आ जाएगी मतलब अगर जरूरी है, क्योंकि वो उन्हीं की है ये सारी सृष्टि। लेकिन इसमें कई बार एक स्टेज आती है बीच की अवस्था जब व्यक्ति इस तरह के प्रश्न कर सकता है कि क्या फायदा हुआ, शायद मैं औरों की तरह जीवन जीता, ठीक है वो भी तो एक अच्छा जीवन था। कई बार वो आश्रम में आएगा फिर वहां देखने लगेगा, अरे कौन है, कोई तो दिख नहीं रहा मुझे, पहला सुपरमैन का नमूना। ये सब भ्रांतियां हैं, इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अगर आप क्लोजली देखोगे तो आपको सब दिखाई देगा। डिपेंड करता है कि हम क्या देख रहे हैं, और किसी भी व्यक्ति को हम उसके पास्ट से रिलेट करके नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए हमको पता नहीं है कि उसके अंदर कितना कुछ परिवर्तित हो गया है। तो लेकिन व्यक्ति इस प्रकार से देख सकता है। इन सच मोमेंट्स एंड दे आर समटाइम्स फ्रीक्वेंट एंड लॉन्ग, ऑल दी हायर एक्सपीरियंस इज फॉरगॉटन एंड द हार्ट कंसेंट्रेट्स इटसेल्फ इन इट्स ओन बिटरनेस। तो श्री अरविंद हमको कोई झूठा दिलासा नहीं दे रहे, तुम परसिस्ट करोगे अंत में तुम पहुंचोगे, ये निश्चित है। किसी ने पूछा, जैसे माँ ने एक जगह लिखा है कि ये एक एडवेंचर है, और माँ आगे लिखती है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है ये मैं नहीं कह सकती हूं, लेकिन इतना निश्चित है कि अंत में फुलफिलमेंट मिलेगी। तो लोग घबरा जाते हैं, अरे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है मैं नहीं कह सकती हूं। तो ये एडवेंचर इस सेंस में है क्योंकि हर एक व्यक्ति की एक यूनिक नेचर है, यूनिक पास्ट है, यूनिक डेस्टिनी है, कर्मों की एक यूनिक लाइनेज है। तो ये कह देना कि हर किसी के साथ एक अनकंडीशनल ऐसे चीजें होंगी बाहरी जीवन में, ये निश्चित नहीं है। लेकिन निश्चित क्या है, निश्चित यह है जो श्री अरविंद सावित्री बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं कि इवन थ्रू द टैंगल्ड एनार्की कॉल्ड फेट, इवन थ्रू द बिटरनेस ऑफ डेथ एंड फॉल, एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड इज फेल्ट अपॉन अवर लाइव्स, इट इज नियर अस इन अननंबर्ड बॉडीज एंड बर्थ्स, इन इट्स अनस्लैकनिंग ग्रैस्प इट कीप्स फॉरएवर सेफ द गॉडहेड प्रॉमिस टू अवर स्ट्रगलिंग सोल्स व्हेन फर्स्ट मैन्स हार्ट डेयर डेथ एंड सफर्ड लाइफ। ये प्रॉमिस हमेशा स्टैंड करती है, ये प्रॉमिस हमारी सोल के लिए प्रॉमिस है। और जैसे जैसे हम भगवान में ग्रो करने लगते हैं, हमारी सारी सत्ता को ये अधिकृत करने लगती है, जो भी हम भगवान को दे देते हैं। बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपके सारे घर द्वार सब कुछ की सुरक्षा करे, एक एक तो आपने तो वो दिया नहीं है ना, वो तो आप अपने यू के हिसाब से चला रहे हो। तो कोई भी राजा अगर आप जब दोगे, उसके बाद ये प्रश्न उठता है कि वो उसके साथ क्या करेगा, जब आपने उस चीज को दिया ही नहीं है। तो फिर आप ये जो इमेजिन कर रहे हो कि अपने आप तो फिर भगवान पीछे से हैं और सृष्टि अपने हिसाब से प्रकृति काम कर रही है। और अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्टली भगवान इंटरवीन करके सब कुछ अपने हाथ में ले, तो पहले आपको उनके हाथ में देना होगा। तो यहां पर इस बात को स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। फिर वो कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी एक्सपीरियंस होते हैं फॉल्टरिंग्स, इन सब के बीच में हम धीरे धीरे भगवान का स्पर्श महसूस करने लगते हैं। एक बड़ी सुंदर बात यहाँ बता रहे हैं, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी फ्रॉम द बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द आर्डुअस डिफिकल्टी ऑफ द पाथ एंड टू फील द नीड ऑफ ए फेथ विच टू द इंटेलेक्ट मे सीम ब्लाइंड बट येट इज वाइजर देन अवर रीजनिंग इंटेलिजेंस। इसीलिए श्री अरविंद किसी से ये नहीं छिपाते हैं, कहीं ये नहीं कहते हैं कि आ जाओ आज से तुम्हारे पूरे जीवन का सारा कुछ भी नहीं होगा, सब मैं भार उठा रहा हूं। नहीं, आपकी सोल की पूरी जिम्मेदारी उनकी है, और जो जो हम उनको अर्पित करते जा रहे हैं, जिस पर उनकी टच पड़ती जा रही है, वो टच करके हो सकता है अपने पास रखें या हमें वापस दे दें या नई चीजें हमारे जीवन में दें, वो सबकी जिम्मेदारी उनकी होती है। तो यहां वो कह रहे हैं कि शुरू से ही ये याद रखना चाहिए, फॉर दिस फेथ इज अ सपोर्ट फ्रॉम अबव, Our faith persevering will be justified in its works and will be lifted and transfigured at last into the self-revelation of a divine knowledge. Always we must adhere to the injunction of the Gita. तो क्या कह रही गीता जो शेरविन कहते हैं हमेशा हमको ये सब लिख करके अपने छाती में अपने हार्ट में और बाहर भी ये स्मरण रखना चाहिए. योगा मस्ट बी कंटिन्यूअली अप्लाइड विद ए हार्ट फ्री फ्रॉम डिस्पोंडेंट सिंकिंग. दुखी मन से अरे क्या करें, हाँ हो रहा है योग. भगवान को भी कैसा लगता होगा, कहते होंगे मुझे यमराज बना रहे हो जैसे मैं कोई पाश में खींच के ले जाए. ये प्रेम पाश है क्योंकि भगवान का रास्ता आनंदमय का रास्ता है, उसमें जॉय आना चाहिए. और अगर जॉय नहीं आ रहा है, डिस्पोंडेंट हो रहा है, तो कहीं यम का साया पड़ रहा है. और बार बार इसके लिए सचेत रहना कि ये डिस्पोंडेंट सिंकिंग जो आती है, सोचिए आप कोई एक अच्छा मनुष्य, एक नोबल व्यक्ति कोई किसी को साथ लेके चल रहा है और वो व्यक्ति हमेशा अनमना हो के अरे क्या फ़ायदा, ना जाने क्यों मैं, मेरा जीवन तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, आपका साथ मिलके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई. अब कौन होगा जो मूर्ख जो कहेगा नहीं आप चलो मेरे साथ. भगवान के पास तो उनके पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो डिस्पोंडेंट हार्ट से ये मेरे जीवन में क्या कर दिया, वो क्यों तबाह कर दिया. देखिए यही डिफरेंस है. लोग कहते हैं अर्जुन की तरह भगवान हमारे पास भी आ जाए, रथ पे बैठ जाए. अर्जुन का देखिए, अर्जुन प्रश्न नहीं करते हैं श्री कृष्ण से. अच्छा अभिमन्यु का ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं महाभारत में जो ओमिशंस हैं. अर्जुन पूछते नहीं अरे आपने, आप तो भगवान हो, आपने एश्योरेंस दिया था, अर्जुन कैसे मर गया. अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं और उन्होंने श्री कृष्ण को कहा था युद्ध मैं लड़ूंगा, आप बस मेरे साथ बैठे रहिए. वो जानते हैं कि उनका क्या रोल है, हर व्यक्ति का क्या रोल है. ये अद्भुत बात है. सो इस प्रकार से श्री अरविंद हमें बता रहे हैं, ऑलवेज वी मस्ट रिपीट टू द डाउटिंग इंटेलेक्ट द प्रॉमिस ऑफ द मास्टर. आई विल श्योरली डिलीवर दी फ्रॉम ऑल सिन एंड ईविल, डू नॉट ग्रीव. एट द एंड द फ्लिकरिंग्स ऑफ फेथ विल सीज, फॉर वी शैल सी हिज फेस एंड फील ऑलवेज द डिवाइन प्रेजेंस. तो अब ये, अब नेक्स्ट पैसेज में ये बता रहे हैं श्री अरविंद कि लेकिन ये लंबा रास्ता क्यों है, इतना समय क्यों लगता है, क्यों नहीं सीधा भगवान में मिल जाऊं, नाम लेना शुरू किया जैसे वो सिनेमा में आता है कि वो बैठा 3 दिन और अचानक भगवान प्रकट हो गए. तो इसका कारण क्यों है, तो ये बता रहे हैं वो. द मास्टर ऑफ आवर वर्क्स रेस्पेक्ट्स अवर नेचर इवन व्हेन ही इज ट्रांसफॉर्मिंग इट. He works always through the nature and not by any arbitrary caprice. The imperfect nature of ours contains the materials of our perfection, but inchoate, distorted, misplaced, thrown together in disorder or a poor imperfect order. कुत्ता को कैसे माने सिखाई पेंटिंग. माने उसका, अब माने देखा उनके अंदर कोई चीज है तो कैसे लाइन खींचना माने सिखाया, लिटरली वहां से स्टार्ट किया है. अब देखा उन्होंने कि इस प्रकृति के अंदर कोई संभावना है और वो संभावना कहाँ तक जा सकती है ये उसकी है. तो भगवान हमारे अंदर छिपी संभावना देखते हैं और हमारे बाहरी नेचर के अंदर कई चीज़ें जो इनकोएट लगती है, इनकोएट यानी जो कन्फ्यूजिंग सी, केओटिक सी. जैसे कोई बच्चा है वो मारपीट कर रहा है हमेशा, टीचर बड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन जो समझदार टीचर है वो क्या करता है, वो कहता है अच्छा इसको मिलिट्री में भेज दो. अब देखिए यही थी ना फिल्म थी डर्टी हैरी और भी आई थी इस प्रकार की फिल्में जिसमें जो लोगों के अंदर ये इम्पल्स थी. और ये भारत ने बहुत अच्छी तरह इस चीज़ को पकड़ा था, इसीलिए जो वायलेंट इम्पल्सेज हैं उसको क्षत्रियत्व की तरफ मोड़ दिया था. तो हमारी प्रकृति के अंदर ऐसी बहुत सी टेंडेंसीज हैं जिसको हम नहीं समझ पाते हैं, जो हमको मीनिंगलेस लगती हैं, लेकिन उन सबको भगवान यूज़ करते हैं परफेक्शन बिल्ड करने के लिए. हम क्या चाहते हैं, उनको काट देना, हटा देना. इसलिए आगे वो कहते हैं कि ऑल दिस मटीरियल हैज टू बी पेशेंटली परफेक्टेड, प्योरीफाइड, रीऑर्गेनाइज्ड, नॉट हैक्ड एंड ह्यून एंड स्लेन और म्यूटिलेटेड, नॉर obliterated by simple coercion and denial. ये गलत है, ये सही है, इसको छोड़ दो। माइक जे कहती है इससे तुम ऑफर नहीं कर पाते हो, क्योंकि एक टेंडेंसी होती है जब हम चीज़ों को सही गलत में डाल देते हैं तो हम फिर उनके ऊपर बुर्का पहना देते हैं। जैसे आप देखें कि आप कॉन्वेंट में जाइए तो सिस्टर्स होती हैं, वो पहन के रहती हैं, अब क्यों वो बहुत स्ट्रांग मॉरल ये गलत है सही है, लेकिन उनके निजी जीवन में वो सब कुछ होता है और बहुत बुरी तरह से होता है, क्योंकि आपने कपड़ा डाल दिया। कपड़ा डालने से कोई चीज़ें समाप्त नहीं हो जाती हैं, वो केवल छिपी रहती है। और ये कब होता है, जब हम राइट और रॉन्ग के कंसेप्ट को लेके चलते हैं। राइट और रॉन्ग आवश्यक है, लेकिन इस तरह से नहीं कि ये उफ एक घृणा। आपके अंदर चीज़ें जो इम्परफेक्ट हैं, वो इम्परफेक्शन किसी डीपर ट्रूथ का एक बाहरी रूप है, और अगर हम उसको ऑफर करेंगे ये मान के कि ये इम्परफेक्ट है, तो तभी हम ऑफर करेंगे जब हम राइट रॉन्ग के कंसेप्ट में नहीं है। और जब हम ऑफर करते हैं कि प्रभु हमारे अंदर ये प्रवृत्ति है, हमारे अंदर ये वृत्ति है, तो भगवान उसको लेके धीरे धीरे मोल्ड करते हैं। ऐसे भी वो करेंगे, किंतु जब हम सचेत होकर उनको ऑफर करते हैं तो वो चीज़ बहुत अलग हो जाती। तो कह रहे हैं म्यूटिलेट नहीं करना, ये बार बार आता है योगा वर्क्स में। The world and we who live in it are his creation and manifestation. And he deals with it and does in a way our narrow and ignorant mind cannot understand. वही बना रहे हैं और वो जानते हैं कि ये संसार अभी तक किस evolution के level पर है। वो जानते हैं कि अभी असुर तत्व भी है, राक्षसी तत्व भी है, पशु तत्व भी है, मनुष्य भी है, देवत्व भी प्रकट हो रहा है। तो वो इन सभी चीज़ों को एक vision में देखते हैं और हम चाहते हैं कि देवत्व निकल जाए और बाकी सारी चीज़ें कट के गिर जाए। तो दिस इज नॉट द वे। इसीलिए हम देखते हैं कि आज किसी ने पूछा मुझसे कि आश्रम के मैनेजमेंट में एक सूत्र केवल बता दीजिए। तो मैंने कहा बहुत सूत्र हैं पर एक सूत्र है, मैक्सिमम ऑफ फ्रीडम एंड मिनिमम ऑफ रूल्स। तो मैंने कहा ये कैसे होता है? मैंने कहा डिवाइन कंपल्शन से होता है, डिवाइन इन्फ्लुएंस और डिवाइन कंपल्शन। और आप देखिए क्यों बनाया गया इस तरह से, ये इसीलिए बनाया गया है क्योंकि नहीं तो एक प्रकार की एक हिपोक्रेसी, एक दिखावा, बाहर से आप कुछ दिखा रहे हैं अंदर में कुछ हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें डेवलप होने लगती हैं। तो यहाँ श्री अरविंद कह रहे हैं द ह्यूमन इंटेलेक्ट कट्स आउट द एरर एंड द ट्रूथ विद इट एंड रिप्लेसेस इट बाई अनदर हाफ ट्रूथ हाफ एरर। ये आमतौर पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि इसी कारण वो उसकी उड़ान ऊँची नहीं हो पाती। लेकिन भगवान The master of our works is neither a blunderer nor an indifferent witness nor a dallier with the luxury of unneeded evils. तो जो master of truth है वो हमें अच्छे से जानते हैं। हमको लगता है कि हमारे जीवन में जब stumblings आती हैं, श्री अरविंद के एक aphorism से ना, जहाँ वो कहते हैं कि sin is a trick and a disguise of nature, disguise of Krishna. और फिर वो कहते हैं कि जब पहली बार मैं गिरा तो मुझे भगवान पे बहुत रोष आया कि तुमने मुझे क्यों गिरा दिया, और मैं उनसे लड़ने लगा। फिर गिरा तो फिर मुझे रोष तो आया, लेकिन इस बार मुझे उनको क्षमा करना पड़ा। वेरी फैसिनेटिंग थिंग, बिकॉज वो आप समझे कि भगवान आपको क्यों कैसे ले जा रहे हैं। ये एक लंबी यात्रा के बाद ये चीज़ पता चलती है। इसीलिए कई बार जो लोग पथ पे नहीं चले हैं वो इस पथ को नहीं समझ पाते हैं, और इस पथ पे क्या हो रहा है दे कैन नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज दे हैव नॉट रियली वॉक द पाथ। वो बाहर से चीज़ों को देखते हैं। एक बार श्री अरविंद से किसी ने पूछा कि कई बार लोग हैं इस तरह का व्यवहार करते हैं, जो समाज में ऐसे कोई व्यवहार करता है उनके अंदर जैसे सामाजिक बेसिक कर्टसीज भी नहीं है। तो श्री अरविंद कहते हैं हाँ, हमको अच्छा होना चाहिए सोशल कॉन्शियसनेस में, लेकिन एक आश्रम की पहचान सोशल कॉन्शियसनेस से नहीं है, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से है, जो एक बहुत ही अलग चीज है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मास्टर ऑफ आवर वर्क्स ही इज वाइजर देन आवर रीजन एंड वाइजर देन आवर वर्च्यू। अब समझ आता है मास्टर ऑफ वर्क्स क्यों कह रहे हैं श्री अरविंद। हमको लगता है हम उनका काम कर रहे हैं, वास्तव में भगवान हमारे ऊपर काम कर रहे हैं और वो हमारे वर्क्स के थ्रू उसमें उतर के हमको गढ़ते चले जा रहे हैं। और उसका कारण यह है कि आवर ऑब्जेक्ट इज टू चेंज इनटू द डिवाइन नेचर, बट द डिवाइन नेचर इज नॉट ए मेंटल और मॉरल बट ए स्पिरिचुअल कंडीशन। अब वो कहते हैं कि जैसे ईगो है, ईगो के साथ ही बहुत ये प्रश्न उठता है कि हमारी ईगो सामने आ रही है, तो ईगो को हटाने का अर्थ ये नहीं होता है कि हम मार्टिर बन जाए, कि हर किसी को हम प्रेफरेंस दे देंगे, अपने बारे में नहीं सोचेंगे। ईगो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ईगोइज्म को हटाने का ये रास्ता भी नहीं है, क्योंकि ईगो की सेक्रीफाइस केवल भगवान के ऑल्टर पे की जाती है, मनुष्यों के नहीं। पर आमतौर से इसको समझा जाता है कि अगर सामाजिक स्तर पे समझा जाता है कि भाई एक व्यक्ति अपने ईगो को सेक्रीफाइस करे, ड्यूटी करे, तो वो कर्म योग है। शेरविन स्पष्ट करते हैं जगह जगह, नहीं, दैट इज नॉट एल्ट्रुइज्म, ह्यूमैनिटेरियनिज्म, फिलेंथ्रोपी, ड्यूटीज, ये सब अच्छी चीज हो सकती हैं, हैं भी एक जब हम एकदम अज्ञान में, बट दैट इज नॉट कर्मयोग। तो यहां वो बता रहे हैं, इट इज ईजियर टू स्टार्व द ईगो बाय रिनाउंसिंग द इम्पल्स टू एक्ट और टू किल इट बाय कटिंग अवे फ्रॉम अस ऑल मूवमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। कि अगर मैं काम करता हूं तो मेरे अंदर ईगो आ जाती, तो मैं काम ना करूं। अगर मैं किसी से मिलता हूं तो डिजायर आ जाती है, तो मैं मिलूं ना। इस प्रकार से माइक जगह इस पर बहुत सुंदर ढंग से इसकी बात करती, कहती कि कई लोग इस बात, इस भाव से कि यदि मैं कुछ करूंगा तो वो गलत हो सकता है, वो कर्म करना ही बंद कर देते हैं। और वो बहुत सारे एग्जाम्पल देती हैं और कहती वो, चूंकि अगर मेरे पास चीज़ें होंगी तो मैं अटैच हो सकता हूं, इसलिए वो चीज़ों को देने लगते हैं। संबंधों में भी वो यही चीज करते हैं कि अरे मानवीय संबंध तो प्रॉब्लम होगी तो संबंध ही ना रखो। माँ कहती है फिर बड़े सुंदर ढंग से कि अरे भगवान, अगर यदि ये चाहते इस तरह का निर्वाण तो संसार होता ही नहीं। एक प्रयोजन है कि ये सृष्टि क्यों बनी है, हमको चीजों को सुंदर बनाना है, ना कि उनको काटना, छाटना, तोड़ना, बिखेरना है। तो यहां पर इस बात की ओर संकेत है और अब बताते हैं कि तो हमें क्या करना चाहिए अगर ये हम जीवन को दो भाग में ना काटें। ये नहीं कि हम इसको छोड़ देंगे, केवल हम ध्यान करेंगे, हम केवल आश्रमाइट्स के साथ बातें करेंगे और किसी के साथ नहीं, हम केवल लड़कों से मिलेंगे, लड़कियों से नहीं, या वाइस वर्सा, या हम इस प्रकार के काम करेंगे जो केवल आश्रम का काम है। तो ये एक ट्रेनिंग के रूप में जरूरी है, लेकिन इसको अगर आप फाइनल बना दोगे तो वहाँ पे समस्या होती है, क्योंकि हम धीरे धीरे चीज़ों को दो भाग में डिवाइड करते जा रहे हैं और ये होता है लोगों के साथ, एक सीमित करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर श्री अरविंद हमको बता रहे हैं कि जो भी कर्म कर रहे हो, कोई ये नहीं है कि यहाँ का या वहाँ का, पहली चीज़ है कॉन्सेक्रेशन, आप उसको माँ को ऑफर करते हुए चलो। कॉन्सेक्रेशन ये ईजी पार्ट है, आप रिमेंबर करते हैं कर्म के पहले भगवान को देते हैं, बीच में रिमेंबर करते हैं, कर्म के बाद रिमेंबर करते हैं, इसके बारे में विस्तार से हमने सुना है। दूसरा है रिनाउंस द फ्रूट्स। आपने कर्म किया, आपने कहा भगवान को मैंने दिया, आपने अपने डिपार्टमेंट में दिया उस काम को, उसने कहा ये क्या बेकार काम किया। अब यहां पे आपकी परीक्षा हुई कि आपने वास्तव में भगवान को ऑफर किया था, या आपने किसी मनुष्य को और अपने ईगो के वेदी पर डाला था। और यदि आप ये सुनने को उत्सुक हैं, और यदि आप काम अगर वैसा नहीं हुआ, किसी ने कुछ कमेंट कर दिया इस प्रकार का, उससे आपके हृदय में दुख हुआ, तो मतलब आप अभी फ्रूट से अटैच हैं। तो फ्रूट दोनों प्रकार के, ग्रॉस और सूक्ष्म, दोनों से हमको फ्री होना है। ये भी बहुत मतलब सरल है रिलेटिवली, क्योंकि ये चीज़ हम लोग थोड़े अभ्यास से सीख सकते हैं। लेकिन जो लास्ट चीज़ है वो सबसे कठिन है, और श्री अरविंद उसके बारे में जोर देते हैं। लास्ट है द इगोइज्म ऑफ द डूअर। कॉन्सेक्रेशन, रिनंसिएशन ऑफ फ्रूट, कॉन्सेक्रेशन ऑफ द वर्क बाय रिमेंबरिंग एंड ऑफरिंग, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, रिनंसिएशन ऑफ द फ्रूट, लेकिन इगोइज्म ऑफ द डूअर, जब तक ये नहीं जाएगा तब तक मास्टर ऑफ द वर्क नहीं मिलेंगे। तो इगोइज्म ऑफ द डूअर को जब हटाते हैं तब बड़ी कठिनाई आती है। और कई बार हम लोग ये भाव ले लेते हैं, ठीक है मैं नहीं कर रहा हूं, कर तो भगवान रहे, मैं तो केवल यंत्र हूं। अब ये स्टार्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बाकी सारे लोग यंत्र नहीं है? सोबरिंग थॉट कम से कम जो मैंने समझा है कि जब भी कभी आपको कोई कहे या आपके मन में भाव उठे आप यंत्र हो, तो आपको ये स्मरण रखना है कि सभी तो भगवान का यंत्र है। कौन सी चीज है जो यंत्र नहीं है? वो तो एक पत्थर को उठा के मूर्ति बना सकते हैं, वो एक वो तृण को उठा करके उसमें दिव्यत्व डाल सकते हैं। ये तो हमारी आज यही बात हो रही थी किसी की, किसी ने कहा कुछ लोग जो उनसे मिलने को आए थे और उन्हें एक नाम लिए, नहीं जाऊंगा, कि वो आश्रम को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कहा कोई आश्रम को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ना मैं ना कोई और, मदर एंड शिरविंदो आर रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स। तो कहा नहीं नहीं कुछ लोग ऐसे। मैंने कहा आप चूंकि कुछ लोगों को जानते हैं, आपने उनके या तो वीडियो देख लिए सुन लिए, आपके मन में ये भाव आ गया, आपको कैसे मालूम है कि जो डाइनिंग रूम में चुपचाप कोई काम कर रहा है वो उसके अंदर भगवान की कितनी रेवलेशन हो रही है, यू डोंट नो। तो ये जो भाव, एक अम्बलिंग भाव हमेशा साथ चलना चाहिए कि भगवान के लिए सब यंत्र हैं। और इसीलिए श्री अरविंद एक जगह बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इग्नोरेंस इज ए ग्रेस ऑफ द स्पिरिट, द ब्रेथ ऑफ डिवाइन पावर ब्लोज वेर इट लिस्ट्स एंड फिल्स टूडे वन एंड टुमारो एनदर विद द वर्ड और द प्यूसा। भगवान की मर्जी है, वो पत्थर को उठा करके सिर पे लगा लेते हैं तो मणि बन जाता है, ये तो डिफरेंस, वो जेम स्टोन बन गया ना और वो पवित्र हो जाता है। कहते ना हम लोग, जैसे गया में जाइए वहां पे, यहां पर विष्णु भगवान के चरण पड़े, तो अब वो धूल है चरण पड़े लेकिन वो पवित्र हो गई, क्यों, भगवान की, बाकी धूली वो भी भगवान की है लेकिन वहां पे उनके चरण नहीं पड़े। तो इट्स, अब भगवान के चरण वहां क्यों पड़े, यहां क्यों नहीं पड़े, तो यहां वो कहते हैं इट्स द ग्रेस ऑफ द स्पिरिट। तो सदैव ग्रेस का स्मरण रखना, अंदर में ये भाव नहीं आने देना, लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, जैसे इससे कोई सरोकार हमारा नहीं होना चाहिए एक वर्कर का कि आपका काम कोई जज कर रहा है अच्छा है या बुरा है, क्योंकि वो आपका काम नहीं है। उसी प्रकार से आपके अंदर भी ये भाव आना नहीं चाहिए हमारे अंदर कि हम भगवान के यंत्र हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की जो ईगो होती है वो कभी कभी एक बिल्कुल दूसरे रास्ते पर ले जाती है, रिलीजन स्टार्ट हो जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, और ये सब बातें श्री अरविंद हम लोगों को बता रहे हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धीरे धीरे ये भाव आ जाता है कि आई कैन लीड, आई कैन गाइड, क्यों, क्योंकि भगवान ने मुझे चुना है। अब देखिए ये लाइन बड़ी थिन होती है, भगवान ने मुझे चुना है, देयरफॉर आई एम द मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन। अरे वो सारी सृष्टि चला रहे, ही डज नॉट नीड ए मीडिएटर एंड यू आर नो मीडिएटर, नो बडी इज ए मीडिएटर, सब कुछ उनका यंत्र है, आप भी यंत्र हो, ओके बस पीरियड, होल क्रिएशन उनका यंत्र है, आप भी उसमें से एक यंत्र हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो यहां पर वो बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं, मैन हु हैव दिस डेस्टिनी, ये डेस्टिनी की बात होती है कि भगवान किसी को, वो कहते हैं ना वो किसका भजन है, सूरदास का है शायद, कि किसी को वो चढ़ा देते हैं, भगवान चढ़ने की झाड़ पे नहीं चढ़ाते लेकिन आपको ये लग सकता है मैं हूं, गिरोगे तो बुरी तरह गिरोगे, और किसी को वो धूल में रखते हैं। अब चर्चिल था इतना, जब तक भगवान का यंत्र बना रहा, नेपोलियन था, उनके अंदर कुछ क्षमताएं थी, किसी ने कहा कि भगवान, उनके अंदर तो इतने डिफेक्ट्स थे, दोनों के अंदर थे इंसिडेंटली, नेपोलियन के अंदर भी और चर्चिल के अंदर भी, शेक्सपियर के अंदर भी। तो शेरविंद कहते हैं कि जो लार्ज नेचर्स होते हैं उनके अंदर डिफेक्ट भी लार्ज होते हैं, पर साथ में एक चीज कहते हैं, व्हाई शुड गॉड यूज ग्रेटनेस वेयर एवर ही फाइंड्स इट। वो कोई मेंटल कंसेप्शन की हो, वो ग्रेट तो है इसकी, लेकिन ये आदमी अच्छा नहीं है, मैं यूज नहीं करूंगा, ही विल यूज ग्रेटनेस एनीवेयर। पर डिफरेंस ये कि अगर आप कॉन्शियस इंस्ट्रूमेंट हो तो आप ग्रो कर रहे हो, नहीं तो जैसे ही काम खत्म हुआ यू आर ब्रोकन एंड थ्रोन असाइड। अगर आपने ये सोचा कि आई एम द वन, यही नेपोलियन के साथ हुआ, यही चर्चिल के साथ हुआ, यही डिफरेंस है। जो नेचर्स तैयार हैं भगवान का यंत्र बनने के लिए, डेस्टिनी है उनकी, भगवान उनको उठा देते हैं, जहां काम करना है पहुंचा देते हैं, कैपेसिटीज डेवलप कर देते हैं। लेकिन यदि इंस्ट्रूमेंट ने यह सोचना शुरू किया कि मैं ही हूं, अद्भुत इंस्ट्रूमेंट हूं, मेरे बिना ये नहीं हो सकता, उसके बाद महापतन प्रारंभ हो जाता है। सुनने को मिलता है कई बार लोग किसी किसी के बारे में ऐसे, उनके बिना तो ये नहीं चल सकता, उनके बिना, ये भाव बहुत भयंकर भाव है. मैन हु हैव दिस डेस्टिनी एंड दीज पावर्स कम इजली टू बिलीव एंड डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी मियर इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड ऑफ गॉड और ऑफ फेट. यहां नेपोलियन की बात हो रही, नेपोलियन कहता था ऐसे, इट इज फेटेड दैट आई प्लान. श्री अरविंद स्वयं नेपोलियन के पीछे थे इसलिए वो कह रहे हैं. बट इवन इन द डिक्लेरेशन वी कैन सी दैट देयर कैन इंट्रूड और टेक रिफ्यूज एन इंटेंसर एंड मोर एग्जेजरेटेड इगोइज्म देन ऑर्डिनरी मैन हैव द करेज टू असर्ट और द स्ट्रेंथ टू हाउस विद इन देम. कैसे वो, मदर हैज टोल्ड मी देयर फॉर आई विल डू दिस. अब आप नहीं कुछ बोल सकते हो क्योंकि अब उसका तोड़ नहीं है आपके पास. और ये जिनको ये भाव होता है कि आई हैव बिकम इंडिस्पेंसेबल, ये बड़ी भयानक अवस्था है और वो व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी और ग्रुप लाइफ के लिए बड़ी घातक होती है. लेकिन होती है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड का एक बहुत बड़ा वो आ सकता है. इसलिए श्री अरविंद दिस मैग, और फिर वो किसको, वो व्हेन दे स्पीक ऑफ गॉड इट इज टू इरेक्ट एन इमेज ऑफ हिम विच इज रियली नथिंग बट ए ह्यूज शैडो ऑफ देमसेल्व्स. तो यदि ऐसे व्यक्ति बोलेंगे कि मुझे मां का आदेश है तो किसको, मां कौन है, उन्हीं के अंदर उनकी जो ईगो सेंस है. मान लीजिए किसी के अंदर ये भाव है कि ये फूल चढ़ाना, ये चढ़ाना सब रिलीजन है, तो किया था ना मोहम्मद जी ने, किया था बुत परस्ती, ये बंद कर दो. क्यों? क्योंकि अल्लाह को ये प्रिय नहीं है. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी मैग्निफाइड इमेज को प्रोजेक्ट करके उनको भगवान बना दिया. तो ये एक योग उनका बड़ा अच्छा जा रहा था. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो योगी नहीं थे, किंतु एक योगी का पतन कहाँ हो सकता है जहां वो ये समझने लगता है कि वो अपनी ही मैग्निफाइड इमेज को भगवान का नाम दे देता है और उसको ये लगता है कि भगवान से मुझे आदेश आ रहा है, भगवान मुझे ये कह रहे हैं. तो और कई लोग ऐसे बोलते भी हैं ना कि नहीं, मदर डज नॉट लाइक दिस, मदर लाइक्स दिस. हाउ डू यू नो वट मदर लाइक्स और डज नॉट लाइक. तुम अपने लिए कह सकते हो कि मेरे अंदर ये चीज है, पर संसार के अंदर, मनुष्यों के अंदर, लोगों के अंदर भगवान अपने ढंग से. वो जब तुम्हारी प्रज्ञा जागृत हो जाए तो वो अलग बात है, तब भी तुम इसका ढिंडोरा नहीं पीटते हो. तो यहां पर द मैग्निफाइड इमेज ऑफ देयर ईगो इज द मास्टर होम दे सर्व. तो अब देखिए धोखा कहां हो रहा है कि ये मास्टर है, आई नो नाउ आई एम इन कॉन्टेक्ट विद मदर, बट यू आर इन कॉन्टेक्ट विद योर ओन मैग्निफाइड इमेज ऑफ द ईगो जिसको आपने भगवान का नाम दे दिया. और शेयरविंद यहां आगे, और वो पावर कैन बी डिवाइन और अनडिवाइन. इवन सर्टेन रिलीजियस फाउंडर्स हैव इरेक्टेड द इमेज ऑफ द गॉड ऑफ ए सेक्ट और ए नेशनल गॉड और ए पावर ऑफ टेरर एंड पनिशमेंट और ए न्यू मैन ऑफ सात्विक लव एंड मर्सी एंड वर्च्यू एंड सीम नॉट टू हैव सीन द वन एंड इटर्नल. तो कितना अंदर में ये जो लास्ट पार्ट होता है, ईगो ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो स्टेट होनी चाहिए जहां आप नहीं हो. बेसिकली आप कौन हो, क्या हो, ये आपकी समस्या नहीं है, ये समस्या किसी और की है. और फिर सारी सृष्टि उनका यंत्र है, सारी सृष्टि माध्यम है उनके प्रकट होने का. और तब हम भगवान को उनके विश्व विराट रूप में पाते हैं. आवर नेचर मस्ट हाउस द कॉस्मिक फोर्स. तब हम भगवान को उनके पूरे विश्व में वो कैसे कार्य कर रहे हैं, वह जिसको हम शुभ मानते हैं, वह जिसको हम अशुभ मानते हैं, साधु असाधु, हर चीज के माध्यम से वो कैसे अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, हम मास्टर को वैसे मिलने जाते हैं. फिर अब एक चीज और कहते हैं कि एक स्टेप वो भी है जब हम लिबरेट हो जाते हैं ईगो सेंस से और हम भगवान के यंत्र हैं, भगवान हमारे थ्रू काम कर रहे हैं. अब हम उस अवस्था में भी फ्री हैं, अंदर में जीवन मुक्त की अवस्था है, लेकिन हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं अभी के वो पर्याप्त नहीं है. हमने भगवान को कहा भगवान तबला बजाइए, हम प्रस्तुत हैं, लेकिन खोपड़ी से तबला नहीं बज रहा है. भगवान बेचारे बहुत खोपड़ी को उनको रिजू बनाना पड़ेगा अपना म्यूजिक निकालने के लिए, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट तैयार नहीं है. फिर भी भगवान है, पत्थर से भी संगीत निकाल देंगे. लेकिन जब हम इंस्ट्रूमेंट्स को भी अपने भगवान को अर्पण करते हैं ताकि वो भी अपग्रेड होने लगे, वो भी चेंज होने लगे, तब ये खेल और हायर लेवल पे होने लगता है, क्योंकि ये इतना काफ़ी नहीं है कि हम लिबरेट हो गए ईगो सेंस से, हमारे इंस्ट्रूमेंट लोअर नेचर के ही गढ़े हुए और उन्हीं के माध्यम से करना पड़ता है। एक छोटी सी चीज़ है यहाँ, जैसे हिंदी के ट्रांसलेशन से मैं फ्रीली बात कर रहा हूँ, इसे तो आप देखें कि बहुत से हैं जो बड़े क्लिष्ट हैं, कठिन हैं। तो एक बार बात हुई, कोई कह रहा था कि किसी ने ट्रांसलेट किए थे कुछ, और कम से कम जो मैंने पढ़ा मुझे बड़े सुंदर लगे, सहज लगे, और लगा ये तो बहुत अच्छा है ये, क्योंकि वो जो अभी तक ट्रांसलेशन है बड़े क्लिष्ट हैं। तो जब ये बात डिस्कस हो रही थी, किसी ने कहा हाँ लेकिन उस समय फलां फलां साधक को ये बात कही हुई थी और माँ ने उनको सैंक्शन किया था। मैंने कहा हाँ लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट की सीमा थी, कोई आवश्यक नहीं कि कल एक बेटर और न्यू इंस्ट्रूमेंट भगवान ना क्रिएट कर लें जो बेटर काम करे। आपने वहां उस चीज को रोक क्यों? ये जो आइडिया होता है कि अब एक इंस्ट्रूमेंट जो उस समय अवेलेबल है उसकी अपनी सीमाएं होती है, पर आने वाले समय में तो बेटर बेटर इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, और वो हम देख भी रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि बेटर 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 ट्रांसलेशंस होंगे, बेटर प्रेजेंटेशन होंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स आर गोइंग टू इम्प्रूव, क्योंकि इवोल्यूशन चल रहा है। तो यहां पर शेरविंद ये भी हम लोगों को संकेत देते हैं, इट इज ओनली वेन वी ओपन टू द डिवाइन शक्ति इन द ट्रूथ ऑफ हर फोर्स, नॉट कि लोअर नेचर हमारे थ्रू काम कर रहा है, ईगो सेंस से हम लिबरेटेड हैं, विच ट्रांसेंड्स दिस लोअर प्रकृति, दैट वी कैन बी परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हर पावर एंड नॉलेज। नॉट ओनली लिबरेशन बट परफेक्शन मस्ट बी द एम ऑफ द कर्म योगा। ये भगवद गीता में नहीं है इसकी बात, श्री अरविंद योग में, क्योंकि आप ईगो सेंस से लिबरेट हो गए लेकिन आपका प्रकृति अभी भी लोअर नेचर के सिस्टम में ऑपरेट कर रही है, त्रिगुणात्मक है, तो उसके अंदर रजोगुण भी अचानक प्रवेश करता है, तमोगुण भी आ जाता है, सत्वगुण भी आ जाता है, और आपको बाहरी कर्म को बांधता है, आपको नहीं बांध सकता है क्योंकि यू आर फ्री, बट आपके कर्म को बांध देता है, एक एंगल दे देता है। पर जब आप उस इंस्ट्रूमेंट को भी परफेक्ट बनाते जाओगे, लिबरेट करते रहोगे, तब इट विल बी सो मच बेटर। Ours is a greater demand that our nature shall be a power of the divine in the truth of the divine, in the light, in the force of the eternal self-conscient will, in the wideness of the sempiternal knowledge. The master of the instrument stands behind all this working. जैसे आप वाणी है, अब आप भगवान किसी भी वाणी के थ्रू, एक लिटरली एक इडियट के थ्रू बहुत सुंदर बातें बुलवा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी वाणी में सुचिता है, अगर आपकी वाणी डेवलप्ड है, आपने कभी अपनी वाणी से किसी के लिए कोई अपशब्द नहीं कहे, कभी भी अपनी वाणी का दुरुपयोग नहीं किया, बहुत तरह के दुरुपयोग होते हैं, तो वो वाणी बेटर इंस्ट्रूमेंट बन सकती है, और उसी वाणी को इतना अधिक अपलिफ्ट किया जा सकता है कि उसके अंदर से मंत्रविद वाणी निकले। तो यहाँ इसका संकेत है कि हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके पीछे भी भगवान खड़े हैं, लेकिन उसकी सीमाओं के कारण हम स्वयं उन सीमाओं को पकड़े रखते हैं, इस कारण भगवान का एक्शन उसमें सीमित हो जाता है। एट ईच स्टेप वी कैन से इन द लैंग्वेज ऑफ द संस्कृत वर्स, इवन एज आई एम अपॉइंटेड बाई दी सीटेड इन माई हार्ट, सो ओ लॉर्ड आई एक्ट, but still this action may be of two very different kinds, one only illumined, the other transformed and uplifted. ये difference है इस योग में श्रीमद् भगवद गीता से, एक बहुत बड़ा difference है, क्योंकि यहीं से वो transformation of instruments की बात होती है। क्योंकि अगर मतलब अगर आप भगवान को कहेंगे कि आप music निकाल, वो तो किसी चीज़ से निकाल लेंगे, लेकिन यदि आपका instrument तैयार नहीं है, या आपने सीख लिया, स्वयं श्री कृष्ण से बांसुरी सीख ली, लेकिन ना आपकी फूक में इतनी वो मिठास है, वो शक्ति है, और अगर आपके हाथ में एक छिद्र वाला एक बांस है, तो आप उसको नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट के परफेक्शन की बात इसमें कही गई है, तभी डिवाइन लाइफ संभव है। तो ये यहाँ पे एक नई चीज जुड़ जाती है, और इस तरह से जब हम चलते जाते हैं तो भगवान अपने त्रिविध रूप में हमारे सामने रिवील करते हैं, एक ट्रांसेंडेंट, अपने आप अंदर ही वो चीज एक प्रकट होता है कि ये सब ठीक है लेकिन भगवान इन सब के परे है, पूरी सृष्टि एक कण के समान, यानी पूरी तरह ये विलय हो भी जाए तो भी वह हैं, सदैव थे और सदा रहेंगे, ये अपने अंदर में एक रेवेलेशन के रूप में, एक रियलाइजेशन के रूप में प्रकट होता है। और कई लोग इसको लेकर के अगेन समाधिस्थ हो जाते हैं, लेकिन इस योग में नहीं। तो इस योग में उसको आप बैकग्राउंड में वो हमेशा रहता है, इसीलिए पूरी सृष्टि का नष्ट होना भी इट इज़ लाइक ए ट्रांजिएंट स्टॉर्म। ऐसे सावित्री की अवस्था बतलाइए ना सावित्री में, कि द वर्ल्ड्स डिस्ट्रक्शन ए ट्रांजिएंट स्टॉर्म। तो आप उसमें इतने परेशान नहीं हो जाते, अरे क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे होगा वैसे होगा। आप वो ट्रांसेंडेंट आपको हमेशा लिबरेट करके रखता है विश्व में जो कुछ हो रहा है। अब लेकिन आप विश्व में कर्म में भी उतरते हो, तो यूनिवर्सल पावर के रूप में वो प्रकट होते हैं, चराचर जगत में वही एक्ट कर रहे हैं, इसके अंदर, उसके अंदर, सबके अंदर। वो एक अलग प्रकार की ईगो सेंस से लिबरेशन है, ये नहीं कि मेरे अंदर या कुछ लोगों के अंदर, कुछ विशेष चुने हुए लोगों के अंदर। सब ही नचावत राम गुसाई। तो यू एक्चुअली दिस इज लाइक ए रिविलेशन, कि आप जहां जहां जाते हो जिस जिस रूप में आपको भगवान की लीला, उनकी महिमा, ये आप संपर्क में आते हो। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, श्रीमद कहते हैं वही जो ट्रांसजेंडेंट है हमारे हृदय में विद्यमान है, पुरुषोत्तम जो हमारे हृदय में बैठे हैं, किंतु वो अपने ही अंदर से एक इंडिविजुअल डिवाइन जिनके हम संपर्क में आके व्यक्तिगत संबंध जोड़ते हैं। अब ये योगा वर्क्स में ये इंडिस्पेंसेबल है, क्योंकि आपको हर क्षण, जैसे आप हर समय एक आपके साथ एक टीचर भी है, फ्रेंड भी है, हर एक कर्म में ये कैसे करें, वह कैसे करें, अरे ये गड़बड़ हो गया, ये मैंने रायता फैला दिया, ये प्रॉब्लम होगी, हर चीज में आप उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं। अब ये लास्ट में हम लोग पढ़ के रुकेंगे, पर्सनल रिलेशन की बात श्री अरविंद करते हैं, जो सब जिसमें ये तीनों समाहित हो जाते हैं, यही वो द्वार है जिससे यूनिवर्सल और ट्रांसेंडेंट प्रकट होते हैं। पहले हमको उनके साथ अपने हृदय में जो अंतर्यामी है उनके साथ पर्सनल संबंध जोड़ना है। तो तब क्या रियलाइजेशन होता है, देन आफ्टर वी हैव एंटर्ड द पाथ ही एनवलप्स अस विद हिज वाइड एंड माइटी लिबरेटिंग इम्पर्सनैलिटी और मूव्स नियर टू अस विद द फेस एंड फॉर्म ऑफ ए पर्सनल गॉडहेड। इन एंड अराउंड अस वी फील ए पावर दैट अपहोल्ड्स एंड प्रोटेक्ट्स एंड चेरिशेस। वी हियर ए वॉइस दैट गाइड्स, ए कॉन्शियस विल ग्रेटर देन आवर सेल्स रूल्स अस, एन इम्पेरेटिव फोर्स मूव्स अवर थॉट एंड एक्शंस एंड अवर वेरी बॉडी एंड एवर वाइडनिंग कॉन्शियसनेस एसिमुलेट्स अवर्स। ऐसा लगता है कि ऐसे क्षण होंगे जब यू आर गॉन, यू आर नॉट देयर, इट इज ओनली द डिवाइन हु इज पजिसिंग द फील्ड। अब ये देखिए सारे एक्सपीरियंसेस सब्जेक्टिव है, इवन जहाँ वॉइस की बात की जा रही है, इट इज़ नॉट नेसेसरली कि एक बूमिंग वॉइस भगवान थंडर करके बोल रहे हैं। तो ये सारे आपके सब्जेक्टिव इनर स्टेट्स हैं जिसमें हम ग्रो करेंगे, और ये धीरे धीरे भगवान का रिवेलेशन होता है हमारे अंदर, चेतना विशाल होने लगती है, हमें स्पष्ट दिखता है कि हमारे बावजूद एक लार्ज ग्रेटर विल है जो हमें निर्णायक मोड़ दे रही थी, जो हमारी सुरक्षा कर रही थी, एक वरद हस्त जो हमें पकड़े हुए था। हम तो गड्ढे में गिरने वाले थे, लेकिन वो हमको गड्ढे जैसे होता है ना बंजी जंपिंग नीचे तक ले जाके, लेकिन पकड़ी हुई थी रस्सी, जहाँ तक उनको जाना था वहाँ जाके दिखा के नीचे क्या है बाहर ले आता है। ये सारे अनुभव, और उसके बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि भगवान ने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ा और सर्वत्र है। और ये देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो यूनिवर्सल और इंडिविजुअल की, जब तक हम ये कहते हैं ना मदर इज़ गाइडिंग मी एंड मदर इज़, ठीक है, बट डू यू थिंक शी इज़ नॉट गाइडिंग अदर्स, शी इज़ गाइडिंग द होल वर्ल्ड। तो ये विशालता में जब आप जीने लगते हैं तब आप देखते हो कि हर चीज़ उनका यंत्र है, हर चीज़ के अंदर उन्हीं की लीला है, उन्हीं की महिमा है, पत्थर के अंदर उनकी महिमा है, मनुष्य राक्षस असुर पिशाच उनके अंदर भी, गंधर्व देवलोक सब किसी न किसी रूप में अल्टीमेटली वही एक ही शक्ति है जो सबको नचा रही है। और यदि आप थोड़े बहुत कॉन्शियस हो गए हो दैट इज़ बिकॉज ऑफ हर ग्रेस। तो ये धीरे धीरे चेंज आने लगता है. और ए ब्यूटीट्यूड दैट इन्वेड्स अस, ए लिविंग लाइट ऑफ नॉलेज लाइट्स ऑल विद इन, ए माइटीनेस प्रेसेस फ्रॉम अबव कंक्रीट मैसिव एंड ओवर पावरिंग एंड पेनिट्रेट्स एंड पोर्स इटसेल्फ इनटू द वेरी स्टफ ऑफ आवर नेचर. ए पीस सिट्स देयर, ए लाइट, ए ब्लिस, ए स्ट्रेंथ, ए ग्रेटनेस. ये सारे एक्सपीरियंसेस मीन्स वी आर इन कॉन्टैक्ट विद द मास्टर. और या फिर दूसरे तरह की ये इम्पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, वाइडनेस, पीस, जॉय, बीएटीट्यूड, माइट, स्ट्रेंथ, पावर, लव, दे कीप, दे ग्रो विद इन अस. तो दैट्स बिकॉज मास्टर के हम कॉन्टैक्ट में, या हम उनको अनुभव करते हैं अपने अंदर. लेकिन एक दूसरा भी है जो बड़ा सुंदर है, और देर आर रिलेशंस पर्सनल इंटीमेट एज लाइफ इटसेल्फ, स्वीट एज लव, एनकम्पासिंग लाइक द स्काई, डीप लाइक डीप वाटर्स. कैसे संबंध अपने आप जुड़ने लगते हैं. ये नहीं कि आप फोर्स नहीं कर सकते हो कि भगवान तुम्हारे मित्र हैं, मान के चलो. स्वतः ही आपके अंदर भगवान एज ए फ्रेंड ये आ जाएगा. वो अपनी मित्रता देते हैं, और जब देते हैं वो सखा भाव, तो कोई उससे नहीं छीन सकता. वो एक अलग संबंध है. क्यों? सखा से आप सब कुछ कह सकते हो, सखा से आप कुछ नहीं छिपाते हो, सखा सदैव आपके साथ चलता है, सखा आपको जज नहीं करता है, सखा केवल मार्गदर्शन नहीं करता है, कहता है चलो मैं ले चलता हूं तुमको इस रास्ते से. आपके सुख दुख का वो निरंतर साथी होता है. तब आपको किसी और व्यक्ति से अपनी कोई समस्या शेयर करने की, अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपका चिर सखा आपके साथ है. ए फ्रेंड वॉक्स एट अवर साइड, ए लवर इज विद अस इन अवर हार्ट सीक्रेसी. दुनिया क्या देख रही है जान रही है वो अलग बात है, पर हृदय में आपको पता है कि वो बिलवड तो मेरे साथ है. लवर, बिलवड नहीं लवर, क्योंकि हम लोग कहाँ प्यार कर सकते हैं भगवान को. श्री अरविंद की वाणी भी ना, ए लवर वो प्रेम करते हैं. नो दैट द मदर लव्स यू एंड यू आर द मदर्स. ये नहीं कहते हैं नो दैट यू लव द मदर, वो बहुत बड़ी बात है. नो दैट द मदर लव्स यू एंड यू आर द मदर्स, बेस योर लाइफ ऑन दिस सिंगल ट्रूथ. देखिए श्री अरविंद के शब्दों का चयन, इन्हें कह रहे हैं कि रिमेंबर दैट यू लव द मदर. कहाँ मनुष्य प्यार कर सकता है, बट ही इज द लवर और शी इज द लवर. ए मास्टर ऑफ द वर्क एंड द ऑडियल, ऑडियल के भी वो मास्टर हैं, ले जाते हैं जहां ट्रेनिंग जरूरी है. पॉइंट्स अवर वे, ए क्रिएटर ऑफ थिंग्स यूजेज अस एज इज इंस्ट्रूमेंट. वी आर इन द आर्म्स ऑफ द इटर्नल मदर. All these more seizable aspects in which the ineffable meets us are truths and not mere helpful symbols or useful imaginations. But imagination इसलिए नहीं है क्योंकि आप ये imagine नहीं कर सकते हो. Actually प्रयास भी अगर आप करो, ये आपके अंदर आप one can try imagining, that's different. पर वो concrete होता है, इतना concrete कि आपको उसके परिणाम बड़े स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं. For instance एक परिणाम होता है, आप निर्भय हो जाते हो. अब क्यों निर्भय हो कोई पूछे, ये इसलिए आप निर्भय हो जाते हो क्योंकि ये आपके लिए इज मोर कंक्रीट देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड कि भगवान आपके साथ है. तो आपको डर किस चीज का लगेगा. इवन अगर आप इमेजिन करें कि डिवाइन मदर मेरे साथ चल रही हैं, तो आप किस चीज से भयभीत हो गए. कोई भी इस जगत की या किसी जगत की कोई भी शक्ति, तो ये जो लोग हॉस्टाइल फोर्स हॉस्टाइल फोर्स, अरे जब डिवाइन मदर तुम्हारे साथ हैं तुम किस चीज से भयभीत हो सकते हो. तो ये चीज अपने अंदर अंतर्भास में ये प्रतिबिंबित होने लगती है. और शिरविंद कहते हैं ये इमेजिनेशन नहीं है, ये रियल रियलिटीज हैं. एट ईच स्टेप देयर मियर मेंटल मास्क आर शेड एंड दे एक्वायर ए लार्जर ए प्रोफाउंडर ए मोर इंटीमेट सिग्निफिकेंस. At last, on the supramental borders, all these godheads combine their forces, and without at all ceasing to be coalesced together. On this path, the divine aspects are not revealed in order to be cast away. They are not temporary spiritual conveniences or compromises with an illusory consciousness or dream figures. On the contrary, their power increases and their absoluteness reveals itself as they draw near to the truth from which they issue. ये केवल मार्ग में सहायक तत्व के रूप में नहीं आते हैं कुछ समय, फिर चले जाते हैं. वो ग्रो करते हैं, जब तक वो सुप्रामेंटल इन्फिनिटीज में फ्यूज नहीं हो जाते, सारे गॉड हेड्स उनमें एक हो जाते हैं, तब आप अलग अलग एस्पेक्ट में नहीं देखते हैं। एक जगह माँ बड़े क्रिप्टिक ढंग से कहती हैं कि जो सुप्रामेंटल योग में जुड़े हैं, इट एज सून एज दे एंटर द पाथ एंड वॉक ए लिटिल, इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर देम टू वर्शिप एनी गॉड। इसको लोग अपने अपने ढंग से, लेकिन देखिए माँ की वाणी क्या है, इट बिकम्स इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वो सारे एस्पेक्ट आप उनमें देख रहे हो, सेपरेट सेपरेट नहीं देख रहे हो। कृष्ण जी है उनके सामने, आप खड़े होकर कह रहे हैं डिवाइन मदर, ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय, आपके अंदर ये कॉन्शियस एफर्ट नहीं है, बट यू आर सीइंग ऑल एस्पेक्ट्स इन द वन। तो यहां पर इस बात के बारे में हमें सुंदर सुंदर चीजें जो मार्क में आएंगी, द मास्टर ऑफ आवर वर्क्स इज नॉट ए मास्टर ऑफ इल्यूजन्स बट ए सुप्रीम रियालिटी हु इज वर्किंग आउट हिज सेल्फ एक्सप्रेसिव रियालिटीज डिलीवर्ड स्लोली फ्रॉम द कुकून्स ऑफ द इग्नोरेंस। कई लोग ऐसा बोलते हैं, अरे ये सब तो आपको अपने अंदर फील होता है, तो इल्यूजन्स हैं। तो ठीक है भाई, आपका भी इल्यूजन है, मेरा भी इल्यूजन है, आप अपने इल्यूजन में खुश रहिए। श्री रामकृष्ण ने क्या कहा था, उनसे किसी ने कहा कि जो ये धर्म की तरफ बहुत जाते हैं पागल होते हैं, कहते हैं हाँ कोई कामनी कंचन के पीछे पागल है, कोई धर्म पागल है, बेटर टू बी धर्म पागल। लेकिन श्री अरविंद उसके आगे की बात की, इट इज नॉट इल्यूजन, ये रियलिटी है, ये आपके जीवन में प्रकट होती है कि वो कैसे हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, पर ये अंदर में आपके अंतर्भाष में ये रिफ्लेक्ट होता है। दैट इज हाउ द मास्टर अपीयर्स एंड ग्रोज, वी ग्रो वन विद द मास्टर। इन दैट डिस्क्लोजर द ट्रांसेंडेंट डिवाइन विल बी मोर एंड मोर मेड नोन टू अस इज द सुप्रीम एग्जिस्टेंस एंड द परफेक्ट सोर्स ऑफ ऑल दैट वी आर। But equally we shall see him as a master of works and creation, prepared to pour out more and more of himself into the field of his manifestation. To recognize that and to strive towards its effectuation is the whole burden of the way of divine works in the integral yoga. To ye hai master se milan, aur uske baad kya kya hona hai, ये आगे के चैप्टर्स में। जय मां।